आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
ज्ञानपीठ का दीजिए, ज्ञानपीठ पूजांजलि होगी,
ज्ञानपीठ
होगी यहाँ पर होगी किसी के पास। होगी ये कि और कोई वो प्रदीप पीयूष वाली देखो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी वो लेके नहीं आया बुक इसलिए। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता नांगम न संगम न स्वेक्षा न कायम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोका कूपम न मानम न माया न लोभम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा
न हस्तौ न पादौ
न
घ्राणम
न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा
न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा
न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या
न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न चिंता
न मृत्यु न मोहम न चिंता
न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा
न कार्ष्यम
न चंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा
न खेदम
न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम
त्रिखंडे हरे विश्वनाथम
ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादि जालम
ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादि जालम
न पुण्यम न पापम न चाक्षादि गात्रम
न चाक्षादि गात्रम
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम।
न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो
न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो
न स्वेदम् न भेदम् न मूर्तिर्न स्नेहा
न भेदम् न मूर्तिर्न स्नेहा
न कृष्णम् न शुक्लम् न मोघम् न तन्द्रा
न शुक्लम् न मोघम् न तन्द्रा
चिदानन्द रूपम् नमो वीतरागम्
रूपम् नमो वीतरागम्
नाद्यम् न मध्यम् न अन्तम् न चान्य
न चान्य
न द्रव्यम् न क्षेत्रम् न कालो न भाव
न क्षेत्रम् न कालो न भाव
न शिष्यो गुरुर्नापि हीनम् न दीनम् चिदानन्द रूपम् नमो वीतरागम्
चिदानन्द रूपम् नमो वीतरागम्
इदं ज्ञान रूपम् स्वयं तत्त्ववेदी
ज्ञान रूपम् स्वयं तत्त्ववेदी
न पूर्णम् न शून्यम् न चैत्यम् स्वरूपम्
न शून्यम् न चैत्यम् स्वरूपम्
न चान्यो न भिन्नम् न परमार्थमेकम्
न भिन्नम् न परमार्थमेकम्
चिदानन्द रूपम् नमो वीतरागम्
रूपम् नमो वीतरागम्
आत्मा राम गुणाकरम् गुणनिधिम्
गुणाकरम् गुणनिधिम्
चैतन्यरत्नाकरम् सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे
सुख दुखे
ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा
स्वयं स्वमनसा
ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयम् श्रीमान् हृदा विद्यताम् वितराग भगवान की कोई भी लाल वाली तो थी वो पुस्तक श्लोक में दी हैं पर उनको पूरी की पूरी समझाने के लिए आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेंगे मुझे उसमें से नहीं होंगे कैलकुलेट अकेला पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं अर्थ बाद में बता दूंगा अप्रकम्पात् पुत केवलौखा लेकिन ये नहीं है उसका इंद्र वज्र सत्वेषु मैत्रीम यह की विसट कंदोट दलानुयारम है, विसट कंदोट दलानुयारम सुलोयनम चंद समान तुम होना जियम चंपय पुप सुभम तम कुमतिशम तनमान निद आप्रकम्पात्पुत केवलौघा नित्याप्रकम्पात्पुत केवलौघा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा मनः पर्यय शुद्ध दिव्यावधि ज्ञानवल प्रबोधा दिव्यावधि ज्ञानवल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयूना क्रियासु परमर्षयूना कोष्ठस्थ धान्योपममेक बीजम् कोष्ठस्थ धान्योपममेक बीजम् संभिन्न संस्रोत्रिपदानुसारी
संभिन्न संस्रोत्रिपदानुसारी
चतुर्विधं बुद्धि बुद्धिवलं दधाना
विधं बुद्धिबलं दधाना
स्वस्ति क्रियासु परमर्षयूना ये जो है 64 रिद्धियों को धारण करने वाले, वैसे तो केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता उनके पास ही 64 रिद्धियां होती हैं, और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता तो बाकी 63 रिद्धियों का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। गणधर महाराज ऐसे हैं जिनको कि दीक्षा लेते ही 7 और 63 रिद्धियां हो जाती हैं। तीर्थंकरों को भी ऐसा ही है। विशेष रूप से जो है यहां पर अपन पूजा के पहले और उन सब रिद्धिधारी मुनि जनों को भी अपने कल्याण में कारण बने ऐसी भावना भा रहे हैं। तो कह रहे हैं रिद्धियां 7 प्रकार की होती हैं, बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, औषधि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि और अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, या ऐसे शामिल करेंगे तो ये दोनों भी हो जाएंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा आज फिर भी अगर गलती होगी तो मैं उसको सुधार दूंगा। कल 7 रिद्धियां होती और उनके भेद प्रभेद 64 होते हैं, अपन इसमें देखें एक एक रिद्धि के सारे भेद प्रभेद इसमें बताए जा रहे हैं। नित्य हैं और अप्रकंपात, प्रकंपित होना मतलब वाइब्रेट होना और अप्रकंप मतलब स्थिर। तो कह रहे हैं जो नित्य हैं और स्थिर या कि अचल हैं, नित्य के मायने अविनाशी भी ले सकते हैं, और केवलौघा बुद्ध से ले लिया है अद्भुत, नित्या प्रकंपाद्भुत, प्रकंपात अद्भुत या अप्रकंप और अद्भुत 3 विशेषण बना दिए, अविनाशी हैं और अचल हैं और अद्भुत हैं। ऐसे केवल ज्ञान के धारक जो मुनि हैं, केवल ज्ञान होने के बाद भी मुनि ही कहा जाता है, पुलाक व कुशकुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, ये 5 निर्ग्रंथ हैं। इसमें जो स्नातक हैं वो स्नातक केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वो स्नातक कहलाते हैं। या जो अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले उनको स्नातक कहते हैं। सामान्य रूप से तो स्नातक बैचलर को कहते हैं, ग्रेजुएशन को, लेकिन हमारे यहां पर ये टेक्निकल वर्ड है स्नातक, अर्थात जो अंतर मुहूर्त के बाद और केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं या जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कह रहे हैं जिन्होंने अविनाशी अचल और अद्भुत केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसे केवल ज्ञान के धारी मुनि महाराज हमारे लिए और हमारा कल्याण करने में निमित्त बने। स्फुरन मना पर्याय शुद्ध बोधा, और जिनका मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि है। हाँ, केवल ज्ञान एक रिद्धि है 64 रिद्धि में, और मना पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि है। तो कह रहे हैं मना पर्याय ज्ञान जो दैदीप मान है, ऐसे शुद्ध ज्ञान के धारी वे भी हमारे लिए कल्याणकारी हों। और दिव्यावधि ज्ञान वलभ प्रबोधा, और अवधि ज्ञान भी एक रिद्धि है। तो ये सब बुद्धि रिद्धि के 18 भेद पढ़ रहे हैं अपन पहले नंबर, उसमें से पहला केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरे मना पर्याय ज्ञान, और तीसरे दिव्य अवधि ज्ञान। दिव्य अवधि ज्ञान ये सब सम्यक दृष्टि के ही होंगे, कुअवधि नहीं है, अवधि ज्ञान है। और उसमें भी दिव्य, दिव्य के मायने होता है या तो परमावधि या कि सर्वावधि, और सामान्य रूप से देव नारकियों को देशावधि भी होता है, बहुत थोड़ा सा होता वो, और ये विशेष मुनि जनों को ही होता है परमावधि और सर्वावधि, और किसी को नहीं होता। ये रिद्धियां, एक चीज अपन पहले समझ लें कि ये रिद्धियां सामान्य किसी को नहीं होती, तीन गतियों में तो होती नहीं है, ना देवों के होती है, ना वो जो विक्रिया रिद्धि है देवों के, वो वैक्रिय शरीर की वजह से है, वो तपस्या के फलस्वरूप नहीं है, इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं करें आप। देवों के नारकियों के विक्रिया करने की सामर्थ होती है वो बाई बर्थ, जैसे कि उड़ने की सामर्थ पक्षियों को होती है, वो उस तरह की कोई रिद्धि नहीं, उनने तपस्या से अर्जित नहीं की है वो सामर्थ। तो मनु देवों की भी नहीं होती, नारकी की भी नहीं होती, और तिरंचों की भी नहीं होती, ये मनुष्यों में भी सामान्य मनुष्य की नहीं होती, सिर्फ मुनि महाराज के ही होगी। और जिनका चारित्र श्रेष्ठ होगा महामुनि, उनके लिए ही पंचम काल में किसी को भी 64 रिद्धि में से एक भी नहीं होगी। हाँ, ये भी डिक्लेयर है, क्योंकि इतनी विशुद्धि वर्तमान में संभव ही नहीं है। ऐसे दिव्य अवधि ज्ञान अर्थात परमावधि और सर्वावधि, जैसे मना पर्याय ज्ञान सिर्फ मुनि जनों को ही होता है, ऐसे ही अवधि ज्ञान भी जो परमावधि सर्वावधि है वो भी सिर्फ मुनि जनों को ही होता है। इस तरह के दिव्य अवधि ज्ञान को धारण करने वाले महान ऋषि रीतिधारी मुनियों को ऋषि बोलते हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि वे स्वस्ति अर्थात मंगल करें क्रियासु परमर्षि योना, वे हमारा कल्याण करें, वे परम ऋषि हैं। फिर और कौन सी है बुद्धि रिद्धि, कोष्ठस्थ, एक कोष्ठस्थ धान्योपम, जैसे कि कोठे में अपन धान भर के रख देते हैं बीज, और फिर बाद में जब अवसर आता है तो उसको निकाल लेते हैं, ऐसे ही जो है बीज रूप में बहुत सारा ज्ञान अपने भीतर और रख लेते हैं, और एक शब्द कहा और सारा कुछ आ गया। एक एक शब्द के नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिल आत्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्या दर्शनाय तेजे श्यामि समीचीनम दर्शन, अब शुरू हो गया। और 150 श्लोक हैं, तो 150 श्लोक उनके रिकॉल मेमोरी में सब, जैसे कि आपने आज कंप्यूटराइज है जमाना, तो एक आपने मेमोरी खोली तो उसमें जो ढेर सारी पूरी की पूरी फ्लॉपी आ गई। ऐसे जो है कोष्ठस्थ धान्योपम, जैसे कि कोठे में धान भर के रखे जाते हैं, और इसी तरह से अपने एक बीज मात्र, कोई भी एक बीज पद आ, ये बीज पद है, तो इस बीज पद के स्मरण मात्र से जिनको और सारा ज्ञान द्वादशांग का प्राप्त हो जाता है वो एक बीज बुद्धि कहलाती है। संभिन्न संश्रोत्री, संभिन्न संश्रोत्री वो कहलाती है, जैसे कि चक्रवर्ती का कटक, कटक का मतलब होता है सेना, आर्मी, चक्रवर्ती की सेना खड़ी है अक्षौणी सेना, जिसमें कि 1,00,000 पदाती होते हैं, 84,000 रथ होते हैं, और उतने ही हाथी होते हैं और उतने ही घोड़े होते हैं, एक अक्षौणी सेना इतनी बड़ी होती, और ऐसी कई अक्षौणी सेना उसकी खड़ी हुई हो, और उसमें हाथी चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े हिंडना रहे हैं, और वो क्या मैसेज दे रहे हैं, एक हाथी दूसरे को क्या मैसेज दे रहा है, एक घोड़ा दूसरे को क्या मैसेज दे रहा है, 100,000 पदाति आपस में एक दूसरे को क्या बात कर रहे हैं। दूर खड़े हुए मुनि महाराज चाहे तो सबके बारे में अलग अलग संभिन्न संस्रोति सबकी आवाज को स्पष्ट और अलग अलग अर्थ सहित डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बुद्धि सोचिएगा, अपन तो हल्ला हो रहा है तो ये कहेंगे हल्ला हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो उतने सारे लोगों की बातचीत कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, उसका क्या अर्थ है, सबकी आवाज अलग अलग, सब पहचान करके ये रिद्धि होती संभिन्न संस्रोतित और पदानुसारित। किसी एक पद को चार पद मिलकर के एक वाक्य बनता है, नमः शिवर्धमानाय एक पद हो गया, ठीक है, नमो अरिहंतानम एक पद हो गया, इस तरह से एक पद उस पद को लेकर के और सारा का सारा ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है ग्रंथ का वो कहलाती पदानुसारी रिद्धि। इस तरह ये चार और बुद्धि रिद्धि हो गई, इनको धारण करने वाले ऋषिराज हमारा मंगल करें। अपन ने कितनी रिद्धियां पढ़ ली, 7, 18 हैं बुद्धि रिद्धि में, अब इनको नेक्स्ट फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, इतना ही रखें। हैं स्फुरन मतलब दैदीपमान, स्फुरायमान होना, तो उसको क्या कहेंगे, टू एनलाइट, स्फुरायमान होना, टू एनलाइट, इस तरह इतना शुरू तो हो गया। मैं सोच रहा था कि बहुत बड़े बड़े हैं आज तो, कागज ही बड़े हैं कि प्रश्न ही बड़े, पता नहीं ये कितना बड़ा, एक दूसरा इतना बड़ा, फिर एक तीसरा इतना बड़ा, फिर एक छोटा वाला, फिर उसके बाद में एक बड़ा वाला, फिर ये इस तरह से, हाँ ये छोटे छोटे वाले ऊपर ही लगा लें, ठीक है, आज जो है बड़े वाले को लॉस हो जाएगा, छोटे वाले ऐसे लगाएंगे। ये चाहते हैं कि आज महाराज का दीक्षा दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कोई एक नियम दिला दें जिसका पालन हम आजीवन कर सकें। तो ये जनरल सबके लिए बोल रहे हैं या कि इंडिविजुअल, तो ऐसा हम लोग वहां करते थे पिछले बार जब उसमें थे गंज बासोदा में, तो रोज जो है क्वेश्चन आंसर के समय छोटे बच्चों की स्लिप आती थी कि हम इस चीज का त्याग कर रहे हैं, हम इस चीज का, तो क्या ऐसे ही कर रहे हैं क्या, कोई कोई नियम ले रहा है क्या खड़े होकर के, तो ले सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है, या कि आप ऐसा चाह रहे हैं कि कॉमन हम सबको एक नियम दिलवा दें, ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूं, कोई बच्चे ने लिख करके दिया है, हम चाहते हैं कि हमें कोई नियम दिला दें जिसका हम पालन आजीवन करें, तो तुम स्वयं लेना चाह रहे हैं अपने स्वयं के लिए या सबके लिए, अब तुम्हारे अपने लिए, तो सबसे बढ़िया नियम तो कौन सा नियम दे दें बच्चों को, जितना उन पे पले, लो भाई महाराज कह रहे कि जितना तुमसे पालन हो वो नियम ले लो,
छोड़ियो ना तुम,
हाँ अपने आप सोच करके और ले लो कि ये हम जीवन भर पालेंगे, क्योंकि जीवन भर लेने वाला थोड़ा कठिन मामला है, तो हम हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कैसी कि 9 बार नमोकार मंत्र रोज पढ़ेंगे जीवन भर, इसमें कोई घाटा नहीं, किसी से कुछ पूछने नहीं जाना, किसी से कुछ पूछने नहीं जाना, किसी से कुछ करना नहीं, बीमार है तो बीमार है, कहीं बाहर गए हैं तो कहीं बाहर, तो भी कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, 9 बार नमोकार तो पढ़ने नहीं आ रहा। और इतना ही नहीं, उसमें कौन सी भावना भाना ये और जोड़ लो, जितनी देर में 9 बार नमोकार पढ़ूं उतनी देर भावना भावूं कि मेरा मरण अच्छे से हो, मुझे समाधि पूर्वक मरण हो, तब तो और आनंद आ गया। हां जब भी मेरे मरण का अवसर आवे मैं शांति पूर्वक समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, ऐसी भावना जो जीवन भर भाएगा 9 बार नमोकार पढ़ के, उसकी समाधि भी बहुत अच्छे से आखिरी समय, ताकि अच्छी गति प्राप्त हो, ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत ये छोटे से लगते हैं, आचार्य श्री कहते हैं कि कोई भी नियम छोटा नहीं होता, क्योंकि सब नियम भगवान के द्वारा बताए गए हैं, इसलिए सब नियम बड़े ही हैं। तो ऐसा कर सकते, हमने आपकी इतनी मदद कर दी, इसके बाद आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना। ये भी है, ये जो है ना, ऐसी रेवड़ी नहीं है कि बांट दो। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते कि हाथ उठा दो, ये सब फोकट की बातें हैं। ये धर्म तो बिल्कुल इंडिविजुअल है, धर्म की इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं करो, उसको बहुत कॉमन मत बनाओ। वो हमारे अपने स्वेच्छा पर, हमारे अपने निर्णय पर आधारित है। जब हमारे भीतर वैसा भाव जागृत हो तभी लेना चाहिए, इसलिए उसको कॉमन मत बनाइए। हमारी बात का बुरा नहीं मानना, क्या करें, हमारा वैसा सोच है, जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो। अष्टमी चौदस को होटल में खाना नहीं खाएंगे, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आज महाराज के दीक्षा दिवस पर यही नियम हम लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा है, अष्टमी चौदस को होटल का खाना नहीं खाएंगे, बहुत अच्छी चीज है। इतना तो बहुत हो गया, पहले अवक्ष का ही त्याग करना चाहिए। जिसने भी लिया है उसके लिए आशीर्वाद, महाराज की तरफ से भी हमने दे दिया, दोनों का काम करने। अच्छा नियम है, हैं? कितने दिन के लिए है ये होटल का खाना नियम ले रहे हैं? कुछ थोड़े समय का नहीं लिखा इसमें, जीवन भर का नहीं, थोड़े समय का, ये जितने दिन का भी लेना अपने मन में सोच लेना। देशभक्ति के लिए कोई भजन या कि कोई इस तरह का सुना दीजिएगा आप अपनी वाणी से। अरे वाह, वो बसता तो है सारे जहां से अच्छा हिंदू सता। तो वो हमको आते ही नहीं है, वो जो बच्चों को आता है, बच्चे तो आज गाया भी होगा बच्चों ने बहुत मजे से। हमको कोई, ये इसमें भी यही लिखा है, चलो ये अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं। महाराज क्या रंग खेलना पाप है? जो लोग रंग खेलते हैं, दो चीजें हैं, देखो रंग वाला खेल तो निकल गया, उसमें भी हिंसा होती, आने वाला कौन सा खेल है? पटाखे वाला। उसके बारे में पूछना चाहिए था कि हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, इतनी हिंसा होती है और रौद्र ध्यान है, हिंसा में आनंद मानते हैं, इतना ही नहीं हिंसा हो जाती है तो गिल्टी फील करते हैं, ये तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन उस समय हमसे हिंसा होती है और हम एंजॉय करते हैं, हम एक पटाखा फूटता है तो बहुत मजा लेते हैं कि अरे वाह, और उसकी अकेले आवाज से कितनी जीव राशि, छोटी मोटी के तो प्राण ही निकल जाते हैं उसकी आवाज से, अपन तक का तो जी बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता अगर अनजाने कोई एक पटाखा बाजू में फोड़ देवे तो, और छोटे मोटे जीवों के तो प्राणांत हो जाता। इसलिए ये अपने को इससे बचना चाहिए, रंग में भी हिंसा है पर उससे ज्यादा हिंसा तो इस वाले, ये पता नहीं कैसे जो है होली के दिन तो एक दूसरे से मिलने और परस्पर स्नेह व्यक्त करने का, प्रेम व्यक्त करने का पर्व था, रंग में रंग गए हम, कौन से वाले मैत्री और वात्सल्य के रंग में रंग गए, तो अपन ने तो अब उसमें कीचड़ डालना शुरू कर दिया दूसरे के ऊपर, ये क्या है। इसी तरह से पटाखे, अपनी खुशी, कौन से वाले पटाखे फोड़ो जिससे कि मन आनंदित हो जाए, ऐसी बात कहो जिससे कि मन में आनंद छा जाए, वो पटाखे थे, ये वाले पटाखे नहीं थे जिसमें कि हिंसा होने लगे हैं। तो अपन ने बहुत चेंज कर लिया उसको, करिएगा। आपने प्रश्न पूछा तो हास्य माला फेर सकते हैं, हाँ फेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई उपवास बीच में टूट जाए तो फिर क्या दोबारा करना चाहिए? आपकी सामर्थ हो तो जरूर करना चाहिए दोबारा। कई बार ऐसा होता है उपवास के दिन वॉमिट हो गई या कि और कोई असुविधा अपने को समझ में आने लगी और जरूर हो गया कि अब तो प्राण ही नहीं बचेंगे तो पानी लेना पड़ा, ऐसी स्थिति आ जावे तब फिर जो है अपना वो, या कि ऐसा भी हो जाता कई बार कि बाहर गए हैं अब मंदिर की सुविधा नहीं है और चौदस तो है, तो चौदस का उपवास तो कर लिया लेकिन पूजा नहीं मिली, पूजा नहीं मिली तो एक और उपवास करेंगे पूजा के साथ करें। वास्तव में तो ठाट वाट से जिस दिन पूजा करें उसी दिन उपवास श्रेष्ठ है। और अगर अपन ने अकेले चार प्रकार का भोजन नहीं किया और मंदिर के दर्शन भी नहीं मिल पाए तब फिर एक एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, ठीक है। धर्म का अर्थ क्या है? छोटे बच्चे ने लिखा है। हमने वो जो एबीसी ऑफ जैनिज्म में है तो उसमें क्या लिखा, आर्ट ऑफ लिविंग, या कि नोबल लाइफ, एक आदर्श जीवन जीना ही रिलीजन है, धार्मिक होना है, या कि हमारा आदर्श जीवन हो इसके लिए हम जो भी करते हैं वो सब धर्म है। दूसरा, धर्म के मायने हमारा अपना कर्तव्य है। अच्छा, छोटा मोटा कर्तव्य नहीं है, हमारा अपने आत्म कल्याण का भी कर्तव्य है, हमारे परिवार के सुख सुविधा का ध्यान रखना भी कर्तव्य है, हमारे समाज का उत्थान हो इसके लिए निमित्त बनना ये भी कर्तव्य है, हमारे देश में सभी सुखी रहें इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ये भी कर्तव्य है, ये सब, और प्राणी मात्र के प्रति दया रखना यह भी धर्म है। इस तरह ये सब कर्तव्य हमारे जीवन में धर्म के रूप में आ जाते हैं। और वैसे तो आचार्यों ने क्या लिखा हुआ है, जो हमारा स्वभाव है वही वास्तव में धर्म है, दया भी धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव आदि भाव हैं उनको धारण करना वो भी धर्म है। इस तरह से बहुत सी परिभाषाएं बनाई। आज तो एक भजन छोटे महाराज से आप जरूर सुनवाइएगा। अभी देखो क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर देखते हैं महाराज जाएंगे कहाँ, अभी तो जब तक मन बना लेंगे वो क्या सुनाना है। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर महिला या पुरुष इस बारे में इस धरती पर जन्म लेते हैं या कि लेते हैं तो महाराज या माताजी बनेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद वादा क्यों नहीं निभा। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा एक जगह आता है कि नरक में जब अपन जाते हैं और वहां के दुख भोगते हैं तो उस समय क्या क्या मन में सोचते हैं, अब मैं यहां से निकलूं तो जरूर से मनुष्य होकर के मुनि बनकर के तपस्या करूंगा और अपना कल्याण कर लूंगा, ये तो मेरे से सहन नहीं होता नरक का दुख। लेकिन जैसे ही यहां आकर के जरा संसार की हवा लगी सब भूल जाते हैं। हाँ, वो इनने लिखा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तो आचार्यों ने एक श्लोक ही लिख दिया, जानित जई चिंतित जई जीव जरा मरण भय दुखई विशेषुना विरजई अहो सुबद्धो माया गंठियो। ये जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहाँ इस संसार में भटकते भटकते जन्म मरण का दुख सहते मैंने कभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया, फिर भी ये संसार से विमुख नहीं हो पाता, विरक्त नहीं हो पाता। अहो सुबद्धो माया गंठियो, ये मोह की ग्रंथि बड़ी सुदृढ़ है, बांधी अपने हाथ से है, अब उसको खोलना बहुत कठिन। अपने हाथ से कोई व्यक्ति और कोई चीज कर ले स्वयं तो उसके लिए दूसरा क्या करेगा, दूसरे की हेल्पलेस हो जाते हैं उस समय जब हम ही अपने अहित के लिए कुछ करते हैं, वही चीज इसमें भी है। ऊपर के खंड में रखी प्रतिमाओं की प्रक्षालन करते समय नीचे के खंड में रखी प्रतिमाओं के ऊपर हाथ और शरीर के ऊपरी भाग की छाया पड़ती है, क्या ये दोषपूर्ण है, यदि हाँ तो निवारण का उपाय समझाने का कष्ट करें। प्रतिमाएं बड़ी और बजनी हैं, उनको उठाना तो संभव ही नहीं है, खिसकाना भी संभव नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करें। भाई कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा और उपाय देखना पड़ेगा। आपके यहाँ पर समोशरण बीच की बेदी में नेमिनाथ भगवान के में बहुत बड़ा है और उसमें आप सामने से भी करेंगे साइड से करेंगे तब भी उल्लंघन तो हो गई भगवान ऊपर वाले भगवान का करते समय और हाथ का स्पर्श नीचे वाले जो वेद रखी हुई है, इसलिए समोशरण में रखते समय ही बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपन लोग ऐसा रख लेते हैं पर उनके प्रक्षाल में बहुत दिक्कत होती है, वहीं रखे रखे तो प्रक्षाल बहुत मुश्किल है, उनको वहां से हटाना भी संभव नहीं है। थोड़ा इसके बारे में अभिनय तो आपके खुद समझ में आ रही है। हाँ, मतलब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा वैसे तो नहीं, प्रक्षाल करते हैं तो इसको भैया थोड़ा सा देख करके वैसे तो हो सकता है, एडजस्ट करना चाहिए उसमें कुछ इस तरह का। महाराज मैं बहुत छोटा हूँ पर मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। हाँ, बहुत छोटा तो है वो बच्चा, लिख रहा है कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, पर मुझे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इतना काम कर लो कि अगर गुस्सा आ भी जाए तो बोलना नहीं। हाँ, अगर इतना कर लो तो बहुत बहुत काम निपट जाएगा। दूसरी बात, जिस वजह से गुस्सा आ रहा है ना, वहां से थोड़ा दूर हट जाओ। किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे मन की बात नहीं कही और हमको गुस्सा आ रहा है, हम उस बात को अनसुना कर दें, वहां से हट जाएं। नहीं तो कुछ भी बोल देंगे या कि रोने लगेंगे। हाँ, वीपिंग भी गुस्से का एक रूप है। चार रूप हैं क्रोध के। या तो पूरा शरीर कांपने लगना, आंखें लाल हो जाना, थर थर पूरे शरीर से मैं कंपन होकर के पसीना आना शुरू हो जाना, ये बहुत तीव्र क्रोध की स्थिति है। और दूसरे नंबर की स्थिति ये है कि अपना माथा दीवार से फोड़ लेना, हाँ, गुस्से में आकर के अपना ही अहित कर लेना। और तीसरी स्थिति है कि विड्रॉ करके एक कोने में जाकर के और रोना शुरू कर देना, वो भी क्रोध का एक रूप है। और चौथा रूप कौन सा है, किसी ने एक तमाचा मारा तो ये कहना कि